Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ke tazank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद मनोज जी, थैंक यू निहारिका।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निहारिका भुवानिया।
Let's give you a glimpse of the headlines this evening first. Benchmark domestic indices end flat. Sensex adds 10 points. Nifty closes below 22,550. Union Minister Piyush Goyal inaugurates Bharat Calling Conference in Mumbai, highlights five key enablers for India to become a developed nation by 2047. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.27 per barrel.
बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 10 अंक ऊपर आया। निफ्टी 22,550 के नीचे आकर हुआ बंद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। कहा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में 5 कारकों की होगी प्रमुख भूमिका। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य बढ़कर $73.27 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा। घरेलू शेयर बाजार आज बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी मिला जुला संकेत मिला, जिसका असर निवेशकों पर देखा गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 10 अंक बढ़त के साथ 74,612 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 2 अंक घटकर 22,545 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां पर बिकवाली कहीं अधिक तेज देखी गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.9% की गिरावट हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 2% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ।
And the detailed stocks are as follows now. The benchmark domestic equity indices today ended on a flat note amid mixed global cues. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, added 10 points to close at 74,612. Conversely, the National Stock Exchange, Nifty 50, fell marginally by 2 points to settle at 22,545. The broader market indices at the BSE ended in negative territory. The mid-cap index slipped over 0.9% and the small-cap index shed over 2%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies logged losses. Among the top laggards, Ultratech Cement shed almost 5%, Tata Motors slipped over 2% and Mahindra & Mahindra dropped over 1.9%. Conversely, among the top gainers, Bajaj Financial Services rose almost 2.6%, Bajaj Finance increased almost 2.4% and Sun Pharma added over 1.6%. In sectoral indices at the BSE, 18 out of 21 sectors ended down. Among the top laggards, industrials lost over 2.4%, realty slipped over 2% and power fell 1.8%. In the top gainers, metal advanced 0.7%, financial services rose over 0.3% and telecommunication added 0.11%. Meanwhile, overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,030 companies declined. 943 advanced and 99 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 17 companies hit their 52-week high, while 397 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया भी सेंसेक्स और निफ्टी की तरह बिना किसी खास बदलाव के अपने पूर्व स्तर 87 रुपए 20 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 106.62 पर चल रहा था.
So you know the markets have been following quite a flat trend for some time now. Not very encouraging figures. Any reason for that apart from global cues, you know, which we've been talking about day in day out?
Well, the markets are largely in the range bound state, specifically when we look at Nifty, and they're largely flat. Looks like, you know, specifically on the last day of the cycle, monthly cycle, traders seemingly are cautious. They have a very cautious approach given the fact that there has been a lot of selling, in the past few days and weeks as well. Now, there are various reasons behind that, Neharika. And there are both positive and, not so positive aspects. Let me first point out the positive ones. You know, in fact, one of the reasons which some of the analysts believe that the reason why today and yesterday the markets were range bound or in flat were because of a RBI decision on the NBFC, weighted limits. That seemingly has allowed, NBFCs to put in more cash into the market vis-a-vis their loan portfolios. But apart from that, internationally speaking, the cues are not that positive, specifically with respect to, the tariff policies. The U.S. tariff policies, the so-called trade war between the major economies, that is one, and two, the stance which has been taken by global economic powerhouses like the United States of America vis-a-vis tariffs. That is making, some investors jittery, some traders also a bit jittery. Over-evaluation has always been a cause of concern, but that is something which has been going on for quite some time, and that happens when you see that huge uptrend in the market in a short span of time. So that seemingly comes into picture. Largely speaking, what I would say is that for the past two sessions, it's more or less, it looks like, the market is looking for a clear direction, sort of some messaging in terms of whether policy decisions or in terms of, the ongoing tariff war, that which way should the market move. There are two specific data sets which might become really important in the days to come. That is the US GDP numbers and the Indian GDP numbers as well. That will, of course, point out towards the economic wealth and health and economic well-being of both these economies. India is a very large growing economy at a very large pace, so of course everybody is looking for some positive cues there. And as far as the United States is concerned, everybody wants to see how Trump's ascent to the power in United States of America has brought in changes to the overall GDP numbers. There is a lot of talk which has been happening vis-a-vis trade or tariffs or other economic policies, but what's happening actually on the ground, those numbers will reveal. So maybe next week we might be able to see a bit more clearer picture, but right now it's a very cautious approach which is being taken by the traders, at least for the last two sessions, including today.
So, lots of thoughts that I have going on there. But first, let me talk about retail investors or people who are just starting their investment journey. It's a common phrase that don't put all your eggs in one basket. So, given the market trends, somebody who's just starting out, what would you recommend as be the ideal portfolio in terms of sectors, or which sectors can one look at, in terms of putting their investments in? I believe defense could be one that is going to grow, right?
Well, yes, you're right. Let me first go back to the phrase which you're pointing out. In fact, that's a common phrase, but that seemingly is the mantra for traders and investors in the stock market. You can't put all your eggs in one basket. And there are so many baskets in the stock market. If you divide them sectorally, of course, yes. If you divide them in terms of small cap, mid cap, large cap, then again, there are various options to choose from. It's always important to notice for the retail investor specifically, since you're asking, not only as to whether or not a particular stock is performing well, but also whether you know, that particular company, you know, which owns that stock, is performing well on the ground in its specific sector. Two, how is the sector doing? And three, what are the policies which govern the sector? Are they sustained? Do they have an impact, a positive impact in the short term and in the long term as well? As far as sectors are concerned, you're right. Defense is one, space is another. You know, energy is one more very important sector. But sectoral indices will keep on confusing, you know, you or the investors or us as well. For example, metals and you know, financial stocks were doing well today, but that was not the case 2-3 days ago.
Right.
That perhaps might not be the case again 2-3 days later on. For other sectors also, auto was performing well around say 2 months ago. It was not doing good today. It was not doing good earlier in the week also. Sometime earlier in the last week as well, but there are always rebounds which are likely to happen in sectors. One has to keep a close watch for that, specifically on the stocks which you want to invest in. Do very good research. Don't go by just word of mouth. Do your reading. Learn more about the stock. Learn more about the company, its performance in the short term, in the long term, the sectoral comparison as well vis-a-vis other players in the market, and of course the policy.
यहाँ पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कन्फ्यूज़न यानी दुविधा संशय बाज़ार में आने वाले दिन में बने रहने की संभावना आशंका जो चुनना हो श्रोता चुन लें वो रहेगी. ऐसे में किस तरह जो एक कह लें कि एक नया वर्ग पैदा हुआ था कोविड पीरियड में जिसने अकाउंट अपने खोले और वो लगातार निवेश कर रहा है पिछले कुछ समय से यानी 2-3 महीने का टाइम लें तो बाजार लगातार नीचे जा रहा है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी कोई संकेत बहुत ठोस नहीं आ रहे. ऐसे में अब वह क्या करे, निकल जाए अपने घाटे को बर्दाश्त कर या अभी भी भारतीय बाजार के ऊपर जाने के आसार हैं जहां पर उसके अपने निवेश का 6 महीना पहले किए हुए या 3 महीना पहले किए हुए का बेहतर रिटर्न मिल सकेगा. ये कम समय नहीं बल्कि हम साल भर का यदि समय लेकर चलें तो.
देखिए मैं मनोज जी, मैं समझ रहा हूं कि आप जिस तरह से जिन बातों को उठा रहे हैं क्योंकि वो एक कॉज ऑफ कंसर्न, एक थोड़ी सी हल्की सी चिंता का कारण खासतौर पे उन इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है जो नए नए मार्केट में आए हैं. और नए से मेरा मतलब केवल 6 महीने नहीं है, मार्केट में अगर कोई 4 साल पुराना भी है तो उसे भी नया ही माना जा सकता है. और अगर कोई 20 साल से भी मार्केट में बैठा है लेकिन अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है और जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि वो रिसर्च करके अपना थोड़ा सा ध्यान लगाकर या दिमाग लगाकर अगर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो उसे भी हम नया ही मानेंगे. लेकिन आपने बात की मार्केट परफॉर्मेंस की, पहला तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जिस तरह के उतार चढ़ाव अब बाजार में हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है. बाजार में उछाल भी आए हैं पिछले कुछ महीनों में, चाहे वो बजट के समय पे आए हों, चाहे वो एक चुनावी नतीजों के समय पे आए हों, चाहे वो जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब आए हों. और बाजार में गिरावटें भी आई हैं और उसके कारण लगातार हम उसका एनालिसिस करते रहे हैं, चाहे वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से बाहर जा रहे हों उसे एक कारण माना जा सकता है या फिर ओवर इवेल्युएशन एक कारण माना जा सकता है. लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है और वो ये कि बावजूद इसके कि इस वक्त बाजार में उतार चढ़ाव हैं ये कोई नई बात नहीं है. इस तरह के उतार चढ़ाव मैं कहूंगा कि बल्कि इससे भी बुरी स्थिति और इससे भी घातक स्थिति गिरावट के मामले में पिछले लगभग 3 दशकों में भारतीय बाजार ने, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 7 या 8 बार देखी है, जिसमें सबसे बड़ा झटका लगा था 2008 में जब यूएस सब प्राइम क्राइसिस हुई थी. लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद यानी कि 2010 आते आते भारतीय शेयर बाजार की जो रिकवरी थी उसे बहुत ही बेहतरीन माना जा सकता है. इसी तरह कोविड के दौरान यानी कि कोरोना पीरियड के दौरान भी गिरावट दर्ज की गई लेकिन उसकी रिकवरी भी बहुत बेहतरीन तरीके से हुई. तो बाजारों की ये नियति है स्टॉक मार्केट की ये नियति है कि उसमें उतार और चढ़ाव दोनों रहेंगे, बियरिश और बुलिश ट्रेंड दोनों रहेंगे। जहां तक इन्वेस्टर्स की बात है तो उनको ये समझना होगा कि कौन सी कॉशियस अप्रोच है। एक कॉशियस अप्रोच आपको लेकर चलनी पड़ेगी, ना केवल इन्वेस्टमेंट के मामले में बल्कि इस मामले में भी कि क्या अब आपको बाजार से निकल जाना चाहिए या अभी आपको बाजार में बने रहना है। ये आपका व्यक्तिगत फैसला जरूर हो सकता है, लेकिन इसे आप सेंटिमेंट्स के आधार पर ना लेकर इसे आप एक बेहतरीन रिसर्च के आधार पर लें। अगर किसी सेक्टर का परफॉर्मेंस लगातार बहुत बेहतरीन बना रहा है और उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो जरूरी नहीं है कि उसमें आगे भी गिरावट ही होगी। हो सकता है कुछ हफ्तों तक गिरावट देखने को मिले लेकिन उसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, और इसमें पॉलिसी के जो फैसले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर एक समाहित करके देखें तो मेरा कहना ये है कि आप चिंतित मत होइए, लेकिन आप कॉशियस जरूर रहिए। यानी कि चीजों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। केवल चिंता करने से और चिंता के आधार पर फैसले लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फायदा स्टॉक मार्केट में लोगों को होने वाला।
यानी बड़ी स्पष्ट सलाह हमारे विशेषज्ञ विशाल जी की है कि चिंतित मत रहें और चिंता में आकर कोई भी फैसला ना करें बल्कि सतर्कता के साथ आगे बढ़े। आइए खबरों का सिलसिला भी हम आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में भारत कॉलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत समेत सरकार की रणनीतिक पहलें नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दे रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में 5 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण, लघु उद्योगों का विकास, निरंतरता, समावेशी विकास, कौशल विकास, प्रतिस्पर्धा और निपुण कार्य क्षमता बनाए रखना सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि पहले उत्पादों की गुणवत्ता बड़ी चिंता का विषय हुआ करती थी, लेकिन आज देश गुणवत्ता क्रांति के महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। उन्होंने कहा कि हमें आधुनिक विनिर्माण तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। श्री गोयल ने कहा कि व्यापार और वाणिज्य में स्थिरता एक महत्वपूर्ण पहलू है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए समावेशी विकास भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कौशल निर्माण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है और इससे रोजगार में वृद्धि होती है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपनी दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है। ये सम्मेलन इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस तरह भारत वैश्विक आर्थिक विकास में सबसे आगे खड़ा है। हम यहाँ टिप्पणी आपकी समझना चाहेंगे। 5 कहले के फैक्टर्स को उन्होंने हाईलाइट किया है कि हमें इसकी आवश्यकता है
जी,
किस हद तक यानी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे?
मैं मनोज जी, इनमें से 2 जो फैक्टर्स उन्होंने कहे हैं वो उनको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक तो दक्षता यानी कि एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। हम अगर ग्लोबल मार्केट में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों में, उन वस्तुओं में, उन प्रोडक्ट्स में या उन सर्विसेज में जिसके थ्रू हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, उन्हें हमें दक्षता हासिल करनी पड़ेगी, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। दूसरा, ये ग्लोबल कंपटीशन है, यानी कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमसे बेहतर क्वालिटी अगर किसी प्रोडक्ट में वियतनाम की किसी कंपनी की है, चाइना की किसी कंपनी की है, फिलीपींस की किसी कंपनी की है, फ्रांस की किसी कंपनी की है, तो जो वैश्विक बाजार में जो उपभोक्ता बैठा है वो उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, हमारी चीजों की तरफ कम आकर्षित होगा। तो हम जो मेहनत कर रहे होंगे उसका वो नतीजा हमें नहीं मिल पाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाएगा जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो यानी कि दक्षता और क्वालिटी, मुझे लगता है कि ये 2 कॉर्नरस्टोन, जैसे कि मंत्री जी ने कहा, पीयूष गोयल जी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय बाजार के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी, खासतौर पर जब हम अब ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर कहलाए जा रहे हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ अब हम एक विकसित देश की तरफ रहे हैं, तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।
And let's take a look at the next story now. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that against all the challenges globally, India is moving ahead with growth. Addressing a media conclave in New Delhi today, Ms. Sitaraman said, the global supply chain is where the concentration risks are posing challenges. She said, these are very interesting but very challenging times. The minister said the global order will not be determined by developed nations. She said, trade and technology will play a crucial role in the new world order and India will need to participate. So, you know, I think India is already participating in quite a big way when it comes to trade and technology and AI as well. So, do you see the definition of growth as such changing in that respect? And in what way?
Well, you know, definition of growth is an ever-changing subject because generally, you know, the parameters would remain same in terms of evaluating how the economy is growing and all that. But the aspects, the various components will keep on changing. Perhaps maybe, you know, around, say, 100 years ago, around 80, 90 years ago, when the first industrial revolution happened, manufacturing became the biggest yardstick. It is still an important yardstick, but then it was the biggest yardstick.
Mm-hmm.
Then when the evolution of, you know, computer technology happened, when internet came into being, software technology was considered to be a very important yardstick. Nowadays, when we are moving one step further ahead, you know, artificial intelligence, digital revolution, use of digital technologies in various sectors, that becomes really important and a very significant parameter of judging how the economy is growing. Because in India's case, digital payment systems is one very important marker of this. We've shown the world how it is done. Our UPI systems are praised all over the world. Even developed economies, you know, like Singapore and others, they want to emulate the way we, you know, deal with the digital payment systems and the way we've made it successful. So that is an indicator as to how, you know, various aspects of growth will keep on changing. And now is the time for use of digital technology, where I strongly believe that India has taken the lead and has put itself in a very comfortable and a significant corner.
Very rightly said, very rightly so. And with that, let's also move on to the next story now.
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन नई दिल्ली पहुंच गई हैं. सुश्री उर्सुला यूरोपीय यूनियन के आयुक्तों के समूह के साथ आई हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया. सुश्री उर्सुला आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भेंट करेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे. यूरोपीय संघ के 27 आयुक्तों में से 22 आयुक्त भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आए हैं. ये पहला अवसर है जब पिछले वर्ष दिसंबर में कार्यभार संभालने के बाद कॉलेज ऑफ कमिश्नर के सदस्य यूरोप के बाहर भारत की यात्रा पर आए हैं. इस यात्रा से भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे. भारत और यूरोपीय संघ वर्ष 2004 से महत्वपूर्ण साझेदार बने हुए हैं और हमारे द्विपक्षीय संबंध विभिन्न क्षेत्रों में प्रगाढ़ हुए हैं. यहां पर विशाल जी, पहला सवाल तो यही कि 27 में से 22 कमिश्नर आए हैं, क्या संकेत दे रहा उनका बड़े प्रतिनिधिमंडल के रूप में अध्यक्ष के साथ आना?
देखिए, ये एक सीधा सा संकेत है कि जो बातचीत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ईयू और भारत के बीच लगभग पिछले 4 साल से चल रही है, उसको अब अमलीजामा पहनाना चाहता है यूरोपियन यूनियन. और यूरोपियन यूनियन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा, भारत का बाज़ार कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हब है भारत के लिए. तो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हालांकि दोनों ही जो साइड्स हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन और भारत, इस एग्रीमेंट के दौरान अपने लिए कुछ कंसेशंस चाहेंगी. जैसे कि ईयू चाहता है कि कार्स पर या फिर वाइन पर या फिर और कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो टैक्स है वो कम कर दिया जाए. इसी तरह भारत की मांग शुरुआत में नेगोशिएशंस में शुरुआत से ये रही है कि भारत की जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, यानी कि एमएसएमईज जो हैं, उनको ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में. तो इस तरह की जो बातचीत है, और खासतौर पे अब जो वैश्विक परिदृश्य है, जो टैरिफ को लेकर या फिर ट्रेड वॉर्स को लेकर, उसके चलते मुझे लगता है कि ये दोनों के ही हित में है, भारत और यूरोपियन यूनियन के ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पर किसी तरह की कोई सहमति अब बने और कदम आगे बढ़ाए जा सके ताकि दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को इसका लाभ मिल सके।
जी
Also, you know, we keep talking about technology, we keep talking about AI, also, you know, many other areas of trade. But I would also like to talk about food production. So India is also a leader in that area. Do you think that growing or advancing with this new, you know, global order in terms of trade partnerships and especially with US tariffs and, you know, EU coming to India? So do you see growth in this sector as well?
Well, indeed, of course, because that is going to be really, really important. India has been a leader in the various agriculture products as well. And nowadays, you know, the way we are utilizing technology in the field of agriculture, you know, the agri products is another market. Processed foods and all that is another market, which you know, the Indian manufacturers, specifically, you know, small time producers like you know, farmer entrepreneurs would want to exploit, and that is one particular area which even the government, in its very you know, talks about the trade agreements with various countries, have pointed out time and again that this needs to be done. Apart from that, apart from food, I would also point out, in case of European Union, you know, India has time and again raised this issue. The textile is one sector where India needs to have a bit of more edge in the EU market than it has right now. So all these areas are really, really significant. Let's wait and watch as to how, you know, representatives from both sides come out with solutions and finally, you know, start rolling out this free trade agreement between these two major economies, the European Union and India.
भारत और यूरोप पर चर्चा के बाद आइए अब चलें वैश्विक शेयर बाजार पर ध्यान दें। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा है। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.34%, जापान का निक्केई 225 0.3% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.23% बढ़त के साथ बंद हुए। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.7% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% नीचे आ गया। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों पर ध्यान दें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक मिला जुला रुख था। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी का डेक्स 0.6% नीचे, फ्रांस के कैक 40 में 0.2% की कमी हम देख रहे थे। उधर लंदन का फुटसी 100 0.3% ऊपर चल रहा था।
And as for the US markets, US stocks displayed a mixed trend yesterday amid fresh tariff threats. On Wall Street, the Nasdaq Composite added over 0.2% and S&P 500 ended flat, while the Dow Jones Industrial Average closed over 0.4%. Oil prices edged up after sliding up in the previous two sessions, with supply worries resurfacing after US President Donald Trump announced a reversal of a license given to US's leading oil company to operate in Venezuela. Brent crude was trading over 1%, up at around $73.27 per barrel. WTI crude was trading nearly 1%, up at around $69.30 per barrel when reports last came in. Meanwhile, U.S. commercial crude oil inventories decreased by 2.3 million barrels to 430.2 million barrels in the week ending 21st February, according to data released by the Energy Information Administration.
तेल के बाद आइए चलें सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में सोना आज थोड़ी नरमी के साथ चल रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.82% घटकर 85,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 0.24% अपना चमक छोड़कर 95,030 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ध्यान दें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.82% घटकर 85,170 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 0.1% घटकर 94,550 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, धन्यवाद मन।
Thank you so much, Vishal, for joining us on today's Market Mantra. And before we close, a reminder of the headlines for our listeners. Benchmark domestic indices end flat. Sensex adds 10 points. Nifty closes below 22,550. Union Minister Piyush Goyal inaugurates Bharat Calling Conference in Mumbai, highlights five key enablers for India to become a developed nation by 2047. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.27 per barrel. And with that, it's a wrap on this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra, Mantra.